जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवराज काचार्य अष्टोत्तर सुत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की। स्कंद संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की। समवेत भक्त वृंद की निताय गौर हरि प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो आज हमारे वैष्णव पंजिका के अनुसार एक महान गौर पार्षद श्री रघुनंदन ठाकुर के तिथि है। तो हमारा पारंपरिक ग्रंथ भागवत के परिवर्त में आज हम व्यक्ति भागवत के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो श्री रघुनंदन ठाकुर खंडवासी वैष्णव माने जाते हैं। श्री गौरांग महाप्रभु के जो पार्षदगण थे उनमें से श्रीखंड के पार्षद को सबसे उच्च कोटि के माना जाता था, जिनमें तीन प्रसिद्ध थे, मुकुंद, नरहरि, रघुनंदन। तो जो मुकुंद और नरहरि, ये दोनों भाई थे। मुकुंद जी डॉक्टर थे भाई प्रोफेशन, इसलिए उनको कविराज भी बोला जाता था। नरहरि भाई प्रोफेशन पोएट थे, वो भी कविराज है। जो कविता लिखते हैं अच्छा, वो भी कविराज है। जो डॉक्टरी करते हैं वो भी कविराज बोलते हैं। तो इसलिए दोनों कविराज थे, एक तो भाई प्रोफेशन डॉक्टर, एक भाई प्रोफेशन पोएट। नरहरि बड़े थे, उनके छोटे भाई थे मुकुंद। महाप्रभु के जन्म सिद्ध पार्षद थे। मुकुंद के बारे में कहा गया कि उन्होंने तत्कालीन पूरे बंग के जो राजा थे नवाब हुसैन शाह, उनके रॉयल डॉक्टर, पर्सनल डॉक्टर थे, राजा का व्यक्तिगत वैद्य थे। तो एक बार राजा हुसैन शाह ने उनको बुलाता था बड़ी चेकअप करने के लिए। आजकल जैसे बड़ी चेकअप करते हैं, सब ब्लड फ्लड निकालना वो करना, तब ये सब नहीं था सिस्टम, लेकिन फुल बॉडी चेकअप तभी भी करते थे। फुल बॉडी चेकअप का सिस्टम कुछ नहीं हो, केवल नब्ज देख करके बॉडी चेकअप कर ले, हाँ पूरा बॉडी रिपोर्ट दे देंगे, केवल इसी में से थोड़ा आँख नाक कान देखेंगे और उसको देखेंगे, पूरा बॉडी का रिपोर्ट सिस्टम का सब दे देते थे। आजकल तो 50 टेस्ट, 250 ग्राम खून निकाल लेते हैं फिर भी गलत सलत होता लेकिन तभी जो कविराज हुआ करते थे इतने उनको अज्ञाता होता था। तो उन्होंने राजा का कई समय देख करके परीक्षा कर रहे थे बड़ी चेकअप में। तो उस समय गर्मी का सीजन, सही इस समय सीजन होगा, उमस होता है बड़ा ह्यूमिड। तो उनके सेवक आ करके उनको, तभी जो उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी था नहीं, पंखा तो था नहीं, गर्मी बड़ा होता है, तो मयूर पुच्छ ला करके नवाब को पंखा करने लगे। जैसे भगवान को करते ना पिकअप फीदर में, मयूर पुच्छ का जो पंखा है उसमें आकर पंखा करने लगे। तो मुकुंद जी अपने नब्ज चेक टेस्ट कर रहे थे, बॉडी टेस्ट कर रहे थे, लेकिन नज़र पड़ गया वो पंखा कर रहे थे। देखते ही उनको पंखा कर रहे थे, लेकिन वो थर 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 कांपने लगे, उम्र सीत होकर गिर पड़े। अरे पकड़ो पकड़ो, डॉक्टर को क्या आ गया, वो हमारा चेकअप कर रहे हैं, उनका क्या हो गया। ला करके जो सेवकगण थे उठाए, राजा हुसैन शाह स्वयं उठकर बोला, वैद्य जी क्या हो गया आपका। ना नहीं, मेरा एक पुराना बात बीमारी है, मुर्गी बात जानते ना, एपिलेप्सी बोले है। कभी कभी ना मुर्गी बात होता है तो पानी आदि देखने से होता है, यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ मेरे पास ये किस निकला क्या। लेकिन वो बोले कि नहीं ऐसे है, कब निकला। लेकिन राजा तो इतने तो ज्ञान था, बोला ना ऐसे नहीं होता है, अभी तक तो ठीक था, भले बातचीत कर रहे सब थे, जैसे वो मेरा सेवक ला करके फैन किया, देखे तुरंत वो बात निकला, बात सही बताओ क्या है। उसको देखने से वो बात क्यों निकला, सही में उसको देखने से उनकी बात निकला था। तो जो राजा ने पूछा बार मारा, बोले कि मैं क्या करूं, मर कुछ देख करके मेरा कृष्ण स्मृति हुआ, कृष्ण स्मृति होने से मैं संभाल नहीं पाया अपने आप को। तो अब अंदाज लगा सकते हैं कितने कोटि के भक्त थे वो, जो मयूर के पूछ देखते ही संभाल नहीं पाते हैं, और कृष्ण देखने से क्या होगा उनका। तो इसमें स्मृति होता था, तो राजा ने भी समझ गया था कि इतने कोटि के भक्त हैं। तो वो मुकुंद जब महाप्रभु संन्यास लेकर के नीलाचल आने लगे, तो हर साल बंगाल से हजारों भक्तों चतुर्मास के समय में पूरी आते थे। रथ यात्रा के अवसर पर महाप्रभु रथ यात्रा देखना का मुख्य उद्देश्य नहीं था उन लोग का, उनका उद्देश्य महाप्रभु के दर्शन, उसके संग लेना, इसी के लिए साल में पूरा करते आते थे। और आने क्या, पैदल में आना तो था, गड़फट था नहीं। पैदल में आने के लिए चल करके कई नदी नाला पहाड़ पर्वत, एक महीना लगता था आने में, एक महीना लगता था जाने में, और रहते थे चार महीना पूरी में, छः महीना हो गया ना, और बाकी जो छः महीना बचा वो प्रिपरेशन करते थे, क्या लेकर जाऊँ, कैसे जाऊँ, क्या करूँ, पूरा साल भर गौर कॉन्शियस होते थे। उनका टूर चलता था, हर साल यात्रा होता था। हम लोग तो यात्रा करते नहीं, एक हफ्ता बड़े मुश्किल से छुट्टी निकालेंगे, डेढ़ दिन ही रुकेंगे, डेढ़ दिन आना जाना इसी में से बोलते हैं बहुत बड़ा यात्रा। लेकिन उनका पूरे राउंड द ईयर छः महीना तक प्रिपरेशन करते थे, जब जाएंगे महाप्रभु को मिलने के लिए कुछ तो लेकर जाऊँ, कुछ लेकर जाऊँ जो महाप्रभु के प्रिय वस्तु है, क्या खाने पसंद करते हैं, क्या चाहते हैं, बना बना करके, क्योंकि महाप्रभु थे ना 24 साल नवद्वीप में, तो उनके जो जानते हैं सब उनके इसे वस्तु तैयार करके 6 महीना लगेगा, उसको कैसे लेकर जाएंगे ढोकर, नहीं तो सर में कुछ, बाकी तो कुछ था नहीं, वाहन पहन गाड़ी वस्त्र था नहीं, लेकर जाते 1 महीना जाने में, और यहाँ 4 महीना रुकेंगे, 4 महीना महाप्रभु बुला करके भोजन कराएंगे, कुछ करेंगे, और फिर आने में, तो पूरे साल भर उनका ही प्रोजेक्ट रहता था। तो सिहट से कई भक्त जाते थे, तो वो परिवार तो जाता ही था, और दोनों ही भाई अभी तक शादी नहीं, बड़े भाई जो किए नहीं थे, नरहरि बड़े थे, वो विवाह नहीं किए थे, और वो कैसे करेंगे, छोटे भाई वो भी नहीं किए थे, दोनों भाई जाते थे, ये छुट्टी लेकर स्पेशल जाता था, समझ कैसे भी राजा से कैसे भी करके चले जाते थे। अब जा करके महाप्रभु से मिले, महाप्रभु एक बार बोले मुकुंदा आपको विवाह करना होगा। मुकुंद बोला है किसी मैं नहीं करना चाहता हूँ, नहीं नहीं तुझे विवाह करना होगा। अद्भुत है, महाप्रभु अनेक लोगों को सिखाते कि नहीं वैराग्य धर्म लेना चाहिए, विवाह नहीं करना चाहिए, गृहस्थ समझाना नहीं चाहिए, लेकिन मुकुंद को खुद भगवान बोले नहीं तुझे शादी करना ही पड़ेगा। बोला मैं कैसे करूँ, बड़े भाई शादी नहीं किए, मैं कैसे करूँ भाई, परिवत्ता दोष लगेगा ना, वो ठीक है वो तो नहीं करेगा ना, मैं भी नहीं कर सकता ना, नहीं आपको तो करना ही पड़ेगा ना, मुझे क्यों गृहस्थ धर्म फंसाते, आप स्वयं संन्यास लेकर गए, छोड़ छाड़ कर मुझे क्यों फंसाते ना, मैं तुझे इसलिए फंसाता हूँ कि मैं आपको चुना हूँ, आपके गुण को देखकर मैं आपका पुत्र बनकर के आऊंगा, हाँ मैं इधर आ गया अभी नवदीप में, आप इसलिए मैं आपका पुत्र बनकर आऊंगा, और मैं आपके पिता के रूप में चाहता हूँ, तो इसलिए आप शादी ना, मुझे कौन शादी करेगा, बड़े भाई शादी नहीं किया, मैं बाबा जी हूँ इसे आधा काम चलाता हूँ, जैसे इसे हाँ आधा दिन काम करता हूँ, आधा दिन छुट्टी में रहता है, पूरा ड्यूटी भी नहीं करता हूँ, मुझे कौन जा, बोले नहीं वो हो जाएगा व्यवस्था, आप चिंता मत करो, बाबा जी के लिए कोई माता जी मिल जाएंगे। तो भगवान की व्यवस्था से वो आए, उन्होंने कहा क्या करूँ, बड़े भाई से मुझे अभी शादी करने के लिए ठाकुर जी बोल रहे हैं, आए तो किसी ने व्यवस्था किया, तो फिर उनको विवाह करना पड़ा। अब उनका तो इच्छा था नहीं, लेकिन विवाह किए, घर में रहे, गृहस्थ आश्रम में गए, तो कुछ दिन के बाद उनके पुत्र रूप में उनके श्री रघुनंदन ठाकुर प्रकट हुए। श्री रघुनंदन जी मुकुंद के पुत्र होकर जब प्रकट हुए, बचपन से जब उनका ज्ञान उदय है, मतलब 1.5 साल का हुए थे, तब क्योंकि उनके घर में घराना ठाकुर जी थे, नरहरि जी सेवा करते थे, कभी मुकुंद सेवा करते थे, कभी सुलोचन सेवा करते थे, तो उनका घर में कृष्ण विग्रह था, तो उसको वो सेवा करते थे, तो कभी कभी नरहरि चले जाते थे तो मुकुंद घर में रहते थे, वो सेवा करते थे, तो वो छोटा बालक अवस्था से कोई अपने साथियों के साथ खेलने कूदने ना जा करके जाता था, जैसे घंटी का आवाज़ सुनेगा वो ऐसे, जो फोर व्हीलर था ना उसका, फोर व्हीलर समझते ना, जो दो हाथ दो पैर में, उसको क्या बोलते हैं उस पर का चलने को अपने भाषा में क्या बोलते हैं, अब बच्चे खड़े होने से पहले ऐसे चलते ना फोर व्हील में, हमा गुड़िया, तो आपका भाषा में, हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं, घुटरू बनना ऐसे कुछ बोलते हैं, जो भी हो इसी प्रकार चलते थे, तब घंटी बजाने का शब्द सुनते ही वो पहुंच जाते थे, हाँ घंटी शब्द था, ये घंटी शब्द, घंटा शब्द जानते ही दिव्य शब्द है, ये केवल पूजा आदि में ये शब्द होता है, तो कहीं ना कहीं पहुंच जाते थे, इससे अंदाज लगाओ, क्योंकि पहले जन्म में पुजारी थे वो, नहीं तो इसी में इतना आकर्षित बचपन से, अभी तो फोर व्हीलर में तभी क्यों जाते पहुंच जाते जया करके, और जहाँ पूजा होता था घंटी जाकर बैठते थे पूरा, मैंने जब खड़े भी नहीं हुए थे, अब खड़े होने का तब भी जाके बैठते थे और देखते थे कैसे पूजा करते हैं, कैसे माला बनाते हैं, कैसे माला पहनाते हैं, कैसे भगवान को स्नान करवाते हैं, कैसे उनको श्रृंगार करते हैं, चंदन लगाते हैं, तुलसी चंदन लगाते, सारे बैठ के बड़े ध्यान से देखता था। सब आश्चर्य होते थे, छोटा सा बालक है, अभी खड़ा होना भी सीखा नहीं, अभी ऐसे बल पर हाथ पैर के बल पर जाकर इतने लगन है देखने के लिए। उनके पिताजी ताऊ जी सब मार कर रहे थे, उनके माँ जी भी सभी देख रहे थे, उनका तो बड़ा गर्व की बात है हमेशा। अब किसी बच्चे को देते हैं खिलौने, आजकल तो ठाकुर जी के खिलौना देते नहीं, सब क्या उत्पटांग खिलौना देते हैं, इतने मोटे मोटे तगड़े सब कुत्ते बिल्ली वही देते हैं लाकर, है ना, नहीं कुत्ते बिल्ली भालू सब देते हैं, उसी के खेलो वही बनो। लेकिन लेकिन हम शास्त्रों में देखते हैं उद्धव जी बच्चों जो खेलते थे तो उनके पास कोई और दूसरे खिलौना नहीं था, केवल कृष्ण बलराम के खिलौना होता था, ठाकुर जी के खिलौना होता था, उसी को लेकर जाते थे, उनके साथियों के साथ खेलते थे, कैसे पूजा करे क्या करे क्या करे बच्चे के साथ करते थे, लेकिन खिलौना वही था, दूसरे कोई खिलौना ही नहीं होता था। लेकिन आजकल भगवान के खिलौना तो कोई देते ही नहीं कि पूजा को सिखाने, सब सारे उत्पटांग करते हैं तो वही बनते हैं सब टूरिस्ट, और क्या करें। तो वो जा करके बैठ के देखते थे, तो वे उनके घर में सभी के नज़र था कि उनका पूजा में कितना लगन है, लगन है। तो धीरे 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 बड़े हुए, अभी उनका उम्र केवल 3.5-4 साल का था, थोड़ा थोड़ा चल भी सकते थे, 3.5-4 साल तो बच्चा तो पढ़ लेता है आजकल, तो KG-1 में भी चला जाता है, उसके ट्यूशन मास्टर लगा देते हैं उसके पीछे। तो रघुनंदन को, और इतने सुंदर रूप था दिखने में, इतने सुंदर था, छोटे बालक कैसे सुंदर दिखते हैं, और उसमें रूप अति सुंदर था। तो एक बार उनके पिताजी पूजा कर रहे थे, जाके बैठ कर बड़ा ध्यान से देखा, बराबर देखता था एवरीडे। तो दूसरे दिन पिताजी को कहीं जाना था, शायद चेकअप पर जाना था, राजा घर के बुलावा आया था, तो बोला कि देखो भाई साहब नहीं है, मुझे जाना है, अब घर के ठाकुर कौन पूजा करेगा। तो तुरंत बोला मैं पूजा करूँगा, सब आता है मुझे, सब सिखाऊँ। तो उनका पापा को भरोसा था कि डेली बैठते सब पता है उसको, तो कर लेगा ना, करेगा ना, बिल्कुल करो आप बेफिक्र रहे, मैं करूँगा। तो मुकुंद जी जा रहे थे तो उनके पत्नी के बोलकर गए कि देखो आज का ठाकुर जी के पूजा सेवा पूजा तो बेटा कर लेगा, रघु ने कर लेगा, रघु तो उनको प्रसाद बनाकर दे देना जो भी हो, तो अच्छा प्रसाद बना के देना, पहली बार पूजा कर रहा है ढंग से, कैसे कर रहा है पता नहीं, आकर के देखेंगे, आऊँगा शाम को, नहीं तो कल आ जाऊँगा। तो मुकुंद जी चले गए, तो रघुनंदन इतने खुश हो गए, आज इतने खुश हो गए, उनके जीवन में प्रथम बार उनको चांस मिला आज उनके प्राणेश्वर से प्रभु का सेवा करने के लिए, कृष्ण सेवा करने का मौका मिला, इतने खुश हो गए। आप बहुत जल्दी से उठ कर मंगल आरती उठ गए, उठ करके स्नान करके आप बिल्कुल सजावट हो करके वस्त्र शस्त्र धोकर पहन करके तुलसी चयन पुष्प चयन करके खुद माला बनाने लगे, सब कुछ रेडी करके अब माता जी को बोले अब प्रसाद बनाकर दे देना, मैं जा रहा हूँ ठाकुरबाड़ी में। तभी जमाने में घर से थोड़ा हट करके अलग ठाकुर जी का अल्टर होता था ठाकुर घर, तो वहाँ जाकर बैठ गए, माता जी बनाने लगी प्रसाद भोग बनाने लगी, तो जा करके ठाकुर जी को अल्टर से उठे, सभी देखे थे जैसे जैसे करते थे, उनको अल्टर से ला करके एक पत्थर के पात्र होता था उसमें रख करके उनको स्नान कराए, प्रसादी फूल सब निकाले, स्नान करा करके उनको पोछे, फिर उसके चंदन लगाए, सचंदन तुलसी दल लगाए, फिर पुष्प श्रृंगार किए, फिर वस्त्र धारण कराए, अलंकार पहने, सब जैसे जैसे सब देखे थे, डेली देखते थे, डेली ऐसे करके बैठा दिए। बैठा करके श्रृंगार आदि होने के बाद माता जी ने एक थाली में बढ़िया सा बेसन के लड्डू बना के ला कर रखा, बोला बेटा उसे भोग लगा देना। अब ऐसे ऐसे करने लगे, बोले अरे गड़बड़ तो हो गया, मैं डेली तो देख रहा था पिताजी कैसे सेवा कर रहे थे, ताऊ जी सेवा कर रहे थे, लेकिन ये भोग लगाने समय तो पर्दा खींच देते थे, वो मुझे दिख नहीं पाया, उसका अंदर क्या करते थे मुझे पता नहीं, क्योंकि भोग लगाते समय बंद कर देते हैं, बोले गड़बड़ है, बाकी सब खुला में सब देखा था लेकिन ये नहीं देखा, वो करते क्या उसके अंदर। बैठ कर सोचने लगा, अरे ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो मुझे पता नहीं, पर्दा तो मैं लगा दूंगा लेकिन उसके अंदर पिताजी बैठते थे क्या करते थे ये मुझे पता नहीं। अब बहुत सोच में पड़ा, अब क्या करूँ, फोन नहीं था तो फोन कर पूछ लेता था पिताजी को क्या करूँ लेकिन परेशानी में, अरे सब कुछ देखा था, केवल यही नहीं देखा था कि पर्दा बंद करते हैं लेकिन अंदर क्या करते हैं क्या पता। बैठ के सोच सोच के विचार किया, क्या करते होंगे, खिलाते होंगे और क्या, खाने के लिए पदार्थ ले तो खिलाते होंगे, तो कोई बात नहीं मैं भी खिला दूंगा। तो थाली खिला के रख लिया, अब ये भूल भी गया कि तुलसी पत्ता डालना है, कुछ करना है, थोड़ी भी ये डाल देते हैं। अब पर्दा खींच लिया, बैठ गया, बैठ करके बोला आप आओ प्रसाद पाओ, और के मंत्र ना जंत्र ना तंत्र कुछ पता नहीं बालक है, ये तो देखा नहीं था पिताजी क्या करते हैं, गायत्री करते हैं, ताली मारते हैं, घंट बजाते हैं, वो कुछ पता नहीं था हमसे, तो पर्दा खींच देते थे, जिससे भोग थाली आया बंद कर दी पर्दा, अब पर्दा खींच कर वो अंदर क्या करते हैं कुछ पता नहीं था उसको, छोटे से बालक के 3.5 साल की उम्र के बैठ करके अपनी स्वभाव से उनको बुलाया, बोला ये भी तो छोटे हैं, मैं भी तो छोटा हूँ, और क्या हमारे मित्र हैं, तो मित्र के रूप में उनको बुलाया, बोला आओ खा लो खा लो, कुछ बुलाया और नहीं आए, बोला देखो खाएंगे नहीं जानते ना, आज बनाया माता जी ने, पहले से डेली डेली नहीं बनाते, आज के लड्डू क्या बताऊँ पूरा देसी घी में बेसन का है, आओ तो खाओ तो सही, जैसे कि छोटे बच्चा दूसरे बच्चा को ऐसे उत्साह क्रिएट करता है उनके मन में, नहीं आओ कर इस प्रकार भाषा में उनको बोलने लगा, उन्होंने कहा आओ खाओ इतने बढ़िया बनाया ये किया वो किया, फिर भी ठाकुर जी नहीं आते, बोला देखो तू नहीं आओगे नहीं खाओगे, पिताजी खिलाते डेली खाता था मैं, यहाँ तो नहीं खाएगा, देखो मैं डेली तेरे साथ बैठता हूँ, तेरे सारे सेवा पूजा देखता हूँ, अगर तू मेरे बात नहीं मानोगे तो आपके साथ बच्चे ऐसे करते ना कट्टी बात नहीं करूँगा सीधा, तो धमकी दिया ऐसा भाई नहीं करोगे तेरे साथ मैं ये कट्टी कर दूंगा, लेकिन ठाकुर जी क्या कहे तू सुने नहीं, तो धमकी दिया, धमकी देकर रूठ गया, जा मैं तेरे से बात नहीं करूँगा, मुंह मोड़ कर बैठ गया, तू नहीं खाता डेली खाता आज क्यों नहीं खाएगा, हाँ मैं आज तुझे पूजा करने कहा मेरे से नहीं खाएगा, अब रूठ गया, रूठ कर बैठा, फिर मुंह मोड़ कर देख रहा था, रूठ कर बैठा फिर मुंह को देखता था, बोला नहीं तब भी नहीं खाता, बहुत समझाया फिर समझा उठ कर देखो इतने बढ़िया है मान जाओ खा लो इतने है, बहुत बालक स्वरूप सुलभ उनके भाव से बहुत उनको प्यार से पुकारा समझा तभी नहीं माना, तो बालकों के जो भीटो पावर होता है वो लगाया, सबसे फाइनल पावर होता है क्या रोना, बैठ के रोना, रोएगा तू नहीं खाएगा तब तक मैं रोऊंगा, अब रोने लगे ऐसे रोनकर पकड़ कर के रहा, पकड़ कर रोने लगा, बंद नहीं होता, घंटा भर रोने लगा, रो रो करके तो क्यों नहीं खाए, जिद पकड़ कर, बाल हट्टा भारी बाड़ा बड़ा हट्टा होता है, वो पकड़ लेते हैं जिद्दी, तो आप तो करके ही रहना पड़ेगा परेशान कर देंगे, है ना नहीं, बच्चे जब हट पकड़ते हैं तो बाल हट पकड़ करके रोने लगी, रोने लगे तो भगवान को आपने इसे छोटे बालक भक्त का हट के सामने हटना पड़ा, उनको नतमस्तक होना पड़ा, वो बोले बेटा क्यों रो रहे ना तू आकर खाओ, रो रहे बोलने से क्या होगा, भगवान बातचीत की उनसे, खाओ पिताजी आकर क्या बोलेंगे, तो पूजा नहीं क्या पूजा तो सब क्या, तो खा नहीं रहा तो कैसे कंप्लीट होगा, तो बोले ठीक मैं खाता हूँ ना आओ खाओ, तब रूठ करके बैठा, आंसू पोछा, देखा कि ठाकुर जी अल्टर से उतर के आए और बैठ कर खाने लगे, और एक खाओ और एक खाओ, देखते देखते हंसते हंसते पूरा खिला दिया उनको, पूरा थाली के लड्डू खा गए भगवान आज खा बोला अब संतोष ना जाओ बैठो जाओ, को खुश ने नाचने लगाओ नाचने लगा भगवान खा ले, नाच कूद करके थाली लेकर के मैया बोले प्रसाद ना प्रसाद ठाकुर जी खा गए, माता जी ने सोचे बच्चा है शायद खा गया कि क्या हुआ गिर गया, चलो बच्चा है चलते काम तो चलाया, वो मैंने वो तो कोई विश्वास नहीं करेगा ठाकुर जी खा गए करके। शाम को पिताजी आए, उनका तो विग्रह सेवा का ध्यान था, आके पूछे बेटा रघु हाँ पापा जी ना सेवा कर, हाँ पूरा सेवा किया ना प्रसाद लाओ, ना प्रसाद प्रसाद तो है नहीं, अरे भोग नहीं लगा था, लगाया था उनको पूछे भोग ना, नहीं पूरा थाली भर के लौट दिया था, क्या क्या ना ठाकुर जी खाए गए। मुकुंद सोचने लगे ये मेरा पुत्र रघुनंदन बचपन से मैं देखता हूँ उनको कोई बदमाशी नहीं करता, इतनी अच्छा स्वभाव गुण है, वो मुझे झूठ तो नहीं बोलेगा, आज मुझे ये क्यों बोलता है कि ठाकुर जी खा गए लड्डू सारे, कैसे संभव है हमारा पीढ़ी से पूजा करके आ रहे एक दिन भी एक चना भी नहीं खाए, हम डेली पूजा करते नहीं खाए, वो बोलता है कि पूरा थाली भर लड्डू खा गए, उनके पत्नी बोलते हैं मैं थाली भर के लड्डू दिया था और वो खाली प्लेट लेकर आया, अब वो उनको पूछे तो बोलते ना वो खाए, लेकिन कैसे विश्वास करें कि खाए, वो विश्वास नहीं करते, लेकिन अब क्या करें, बार बार धमकी देकर नहीं आप बोलने से क्या होगा, आप जाके पूछो पूछो उनको वो खाया सर है और क्या, नहीं खा रहा था बड़ा मुश्किल से राजीव पर खाया, अब सब खा गया। अब मुकुंद सुनकर के परेशान हुए, नरहरि से जाकर भाई साहब को पूछे, बोले भैया पता नहीं मैं आप तो थे नहीं, मैं गया था लेकिन वो रघुनंदन को दिया था, वो तो बढ़िया श्रृंगार तो मैं देखा, बड़े सुंदर भाव से किया, सब कुछ किया है, लेकिन बोलते हैं ठाकुर जी भोग खा गए क्या, ऐसे बोलता ना, ना हो ना हो, हमारे से तो नहीं पट्टे उससे वो खिला दिया क्या, कैसे खाए, विग्रह तो जैसे ऐसे ही है। तो बोले नहीं एक बार चेक करना चाहिए, बालक झूठ अभी से झूठ बोलना, सच में झूठ बोलता क्या हमको। तो मुकुंदन ने चेक करने के लिए बोले बेटा हमारा काल भी काम है, तो कर हाँ हाँ करूँगा, क्यों नहीं करूँगा, आज भी करूँगा। तो आज उनका काम नहीं था, आज परीक्षा करना था कि बालक उनका झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, क्या घटना रहस्य है। तो इसलिए सुबह उठ करके ओ जाने का अपना व्यवस्था करके निकल पड़े, लेकिन गए नहीं थे, थोड़ी देर में जाकर वापस आ गए क्योंकि उनको तो चेक करना था। और रघुनंदन तो खुश होकर के अपने सुबह नहा धो करके तुलसी पुष्प सब चयन करके माला आदि बनाने लगा और जाकर ठाकुर घर में बैठ गया। बैठ करके जैसे कल किया था बड़े सुंदर से भगवान को स्नान और चंदन आदि लगाना, श्रृंगार करना, अलंकार धारण कराना, सब प्रकार के सेवा विविध प्रकार से किया और कर करके सेम अपने मुकुंद ने अपने पत्नी को बोल कर गए थे आज भी प्रसाद बना कर देना, मैं देखता हूँ क्या होता है, चेक करेंगे। तो थाली समय पर लेकर के माता जी ने पहुँचा दी और फिर मुकुंद पर्दा खींच कर बैठ गया, बोला काल तो जैसे किया था आज एक्सपीरियंस है, बोला काल तो खाता, आज भी खाओ। लेकिन आज ठाकुर जी नहीं मान रहे बात, अब घंटों हो गया सारे रोना धोना सब कुछ किया और आज तो ठाकुर जी नहीं आ रहे, बहुत चिल्ला रहे, फिर वही रोया उनका काम है। तो अंततः उस बाल हट का सामने भगवान ने हार करके फिर आए, लेकिन भगवान को पता है आज तो पकड़ा जाएगा, छिक कर बैठा है उनके पिताजी, मैं तो आपके लिए आता था, लेकिन वो बोल रहा था कोई नहीं है कोई नहीं, क्यों डरता है, आओ खाओ मैं बैठा हूँ ऐसे कर के अंततः ठाकुर जी को फिर अल्टर से उतार लाया। ठाकुर जी आए, आकर जब लड्डू दो चार खा गए, खा करके और एक लड्डू लेकर खाने ही जा रहे थे, इससे मुकुंद को लगा क्या चुपचाप, अभी तो रोना धोना बंद सब, अभी तक तो रो रहा था, साउंड आ रहा था, अभी साउंडलेस, तो क्या कर रहा है अंदर, तो धीरे से क्या भोग खा रहे ना क्या। तो अंदर दरवाज़ा खोल करके गया, क्योंकि पर्दा खींचा था उन्होंने, जा करके पर्दा के पास खड़े होकर धीरे से पर्दा के भगवान ने खा रहे थे, एक लड्डू हाथ में ले करके इसे मुँह के पास ले ही रहे थे, इतने में मुकुंद पर्दा खोल कर देख लिया कि अल्टर से उतर करके ठाकुर स्वयं थाली के पास बैठ करके लड्डू खाई रहे, हाथ में लिए मुंह में लगा है और एक लड्डू ले रहे हैं। जब देख लिए भगवान वही विग्रह बन गए, वही इसी मुद्रा में रह गए, हाथ में लड्डू ही पकड़ा गए रेड हैंडेड, अब वहीं पे इसे रह गए। मुकुंद बोला क्या हो गया, अब क्या हो गया, देखा तो पिताजी खड़े हैं और पिताजी का तो बड़े आश्चर्य के कारण से उनके आंख से धार धार आंसू बह रहा है, हाय हाय सही में तूने ठाकुर जी को अल्टर से उठा कर खिला रहा है, हम सोचते हम बड़े भगत है, हम कितने पीढ़ी से हम घर में पूजा कर रहे हैं खिला रहे हैं, हम सोचते हम करा रहे हैं, लेकिन आप तो मेरे सामने बालक, तूने ठाकुर भगवान को अल्टर से आपके वजह से आकर के खा ही रहे, मैं देख रहा हूँ और वहीं बैठे अभी तक, वहीं विग्रह हो गए। अब उनको उठा कर बैठाया गया, तभी दिन से उस विग्रह का यही रूप हो गया, छोटे से विग्रह है आज भी है वो। रघुनंदन ठाकुर ने ठाकुर जी को इस प्रकार से करवा दी, अल्टर से उतार कर लड्डू खिला करके, गोपाल लड्डू गोपाल जो पूजा करते ना, शुरुआत यहीं से हुआ, उसके पहले नहीं करते थे लड्डू गोपाल, क्योंकि भगवान स्वयं लड्डू खाने के लिए अब इस प्रकार आ करके छोटे बच्चे के जैसे लेकर खा रहे थे, पकड़ा गए थे, उस विग्रह ऐसे रहे हैं। तो इसे इतने साल पहले, लगभग 450 साल पहले की बात है, महाप्रभु के समय की बात है, तभी समय से तो इतने प्रसिद्धि हो गया पूरे शिखंड में कि एक छोटा सा बालक भगवान को अल्टर से उतार करके साक्षात विग्रह को इसे चेंज कर दिया, विग्रह चेंज हो गए, अभी खड़े हुए कृष्ण थे, अभी एक हाथ में लड्डू लेकर ही विग्रह हो गए, चेंज हो गया उनका डिजाइन, चेंज हो गया रूप रंग, बदल गया उनका, ऐसे लड्डू गोपाल की सेवा कर दी रघुनंदन ठाकुर ने। तो और तो प्रसिद्ध हो गया, अब तो उनके ताऊ जी नरहरि ठाकुर, मुकुंद जी, उनके पत्नी सुलोचना आदि गांव के लोग सब उनको मानने लगे, तो बहुत उच्च कोटि के भक्त है, भगवान को बस करके ले आया उतार करके, बहुत जल्दी ये प्रचार हो गया। तो इस बार जब उन्होंने गए जगन्नाथपुरी, तो महाप्रभु बुलाए उनको, जाते महाप्रभु से मिलने के लिए। दोनों गए, बालक को साथ में ले गए थे, छोटा बच्चा रघुनंदन साथ में गया था। रघुनंदन जा बैठ गया महाप्रभु के पास में, पूरा बैठता उनके पास में जाकर, महाप्रभु उनको आशीर्वाद करके कर रहे थे। तो रघुनंदन आया, प्रणाम किया, मुकुंद आकर प्रणाम किए। महाप्रभु से बोले, मुकुंदा ये बताओ, ये रघु और आप, इन दोनों में से बाप कौन है, बेटा कौन है? सारे भक्त लोग बैठे हैं सबके सामने, महाप्रभु पूछे। मुकुंद बोले, अब आप तो पता तो है, आप ही ने मुझे शादी करवाए, आप मुझे पूछ रहे हैं ये बेटा कौन है, बाप कौन है, लेकिन क्यों पूछ रहे हैं महाप्रभु? तो मुकुंद को समझ में आया, तब सोच करके बोला, प्रभु सच में कहा जाए तो ये पिता, मैं उनके पुत्र हूँ। महाप्रभु बोले, कैसे? ये तो अभी 3 साल का है, 4 साल का है तुझे ना। जहा है ते कृष्ण भक्ति, सही पिता सही गुरु। बोले, जिनके जिनसे मैं कृष्ण भक्ति सीखा, वही हमारा गुरु, वही हमारे पिता है। आपको क्या बताऊं, कुछ ही महीना का पहले, हम तो कई वर्षों से, कई पीढ़ी से हमारा घर में ठाकुर जी की सेवा होता था, और ठाकुर जी के विग्रह परिवर्तन हो गए उनके कारण से, और ठाकुर जी को लड्डू खिला करके गोपाल बना दिया। अब उन्हीं से हम देख करके हम सीखे कि भक्ति कितने होता है, किस प्रकार होता है भाव। तो इसलिए हम तो सोचते हैं वही सचमुच हमारे पिता है, मैं उनका पुत्र हूँ। तो महाप्रभु ने बिल्कुल सत्य कहा, जहाँ है ते कृष्ण भक्ति सही पिता, कृष्ण भक्ति जिससे प्राप्त होता है वही आपके गुरुवर्ग पिता होता है। तो इस प्रकार से रघुनंद ठाकुर बचपन से, क्योंकि महाप्रभु बोले थे कि मैं आऊँगा तो पुत्र, तो भगवत तत्व थे वो जीव तत्व में थे नहीं। तो उसी जमाने में महाप्रभु के और एक पार्षद जिसका नाम था अभिराम ठाकुर, उन्होंने कृष्ण लीला में श्री सिदाम सखा थे, सिदाम जी तो अभिराम ठाकुर बने थे। तो उनका पास, वो रहते थे बंगाल में, तो उनका पास एक चाबुक होता था, जय मंगल उसका नाम था। वो किसको गुस्से में पीट देंगे उसी चाबुक में, तो उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता था। एक बार किसको मारेंगे तो वो नाचेगा कृष्ण कृष्ण मर के। हम जन्म जन्म साधन करके जो कृष्ण प्रेम नहीं पाएंगे, उनसे लाठी से एक मार पड़ने से ऑटोमेटिक कृष्ण प्रेम हो जाता। ऐसे अद्भुत अद्भुत सब भक्त थे, पार्षद थे महाप्रभु के गण में। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, महाप्रभुर संगी गणे नित्य सिद्ध करी जाने, सजाए ब्रजेंद्र सुत पास। ये सब नित्य सिद्ध थे, कोई साधारण थे नहीं, वो तो साक्षात राधारानी के भाई थे। तो आकर के मारते थे, और केवल मारते नहीं थे जयमंगल चाबुक से, किसी को अगर प्रणाम कर देते थे, ओहो वो तो मर ही जाएगा। व्यक्ति को तो प्रणाम करना, किसी को बाई चांस कोई व्यक्ति को प्रणाम कर दिया, व्यक्ति का तो छाती फट जाएगा, मर जाएगा। व्यक्ति की छोड़ो, कोई विग्रह को मंदिर में जाकर प्रणाम कर दे, विग्रह ही फट जाता था, विग्रह भी उनके प्रणाम स्वीकार नहीं करता कर सकता था। आपको पता होगा, जब बांकुड़ा में विष्णु जो एक विग्रह थे, मदन मोहन विग्रह, जबरा हमीरपुर में वो जो राजा था, जो राजा के जो मदन विग्रह प्रतिष्ठा के थे, वो अभिराम ठाकुर जाएंगे जाकर प्रणाम कर दिए, उनको प्रणाम कर देते बिल्कुल टेढ़े हो गए, बिल्कुल मोड़ गए। और कई जगह में कई विग्रह को जो सही प्रतिष्ठा नहीं हुए होंगे, सही भगवत जिसमें आवेश नहीं होगा, वो विग्रह तुरंत टूट जाएगा, ऐसे एक प्रणाम करते तोड़ देते थे। श्रीमन नित्यानंद प्रभु जब गृहस्थाश्रम में गए, तो उनके 6-6, 7-7 बेटों को प्रणाम करके मारवा दिया, एक बार जब प्रणाम करने मर जाए, हाँ ऐसे करते। तो इसलिए सारे इलाके में प्रसिद्ध था कि अभिराम ठाकुर जब आएंगे, भाई सब खबरदार, पता नहीं किसको कब प्रणाम करेगा, अगर प्रणाम करेगा तो राम नाम सत्य हो जाएगा, तो डरते थे उनको। लेकिन जब रघुनंदन का एक ख्याति चारों तरफ चला गया कि उन्होंने साक्षात अल्टर से ठाकुर जी को उतार करके ठाकुर जी के विग्रह परिवर्तन करा दिया, लड्डू खिला दिया, तो ये बात सुनकर के अभिराम बोले, सही में बालक है उनका, ऐसी भाव ऐसी भक्ति, मैं परीक्षा करूंगा जाऊंगा। अब भी फ्रेश नित्यानंद प्रभु के 6-6 लड़का मार के आए थे प्रणाम करके, वो आए खबर भेजे कि मैं आ रहा हूँ, श्रीखंड में आ रहा हूँ। तो नरहरि सब चकुटी के भक्त थे, उनके मित्र थे सब, लेकिन नरहरि भी आकर बोले मुकुंद को, अभिराम आ रहा है, नहीं अभिराम आ रहा है, पता नहीं किस लिए आ रहा है ना, बोलते हैं कि आपको बेटे से मिलेगा, नहीं आ रही, आकर प्रणाम ना कर दे, एक ही तो बेटा है हमारा, इतने सुंदर रूप है, इतने सुंदर गुण है, इतने उच्च कुटि के, इतने अच्छे स्वभाव वाला है, प्रणाम ना कर दे क्या करे। वो रोने लगे। अभिराम ठाकुर आए सुनकर, किसी के घर में कोई इतने बड़े भक्त आएगा तो स्वागत करना चाहिए ना, और स्वागत करने के लिए जितने खुश होता है इतने डर भी लगता है कि प्रणाम ना कर दे। तो डर रहा था लेकिन तो आ ही रहे, प्रोग्राम फिक्स हो गया तो आ ही रहे। तो रघुनंदन को बुला करके दोनों भाई नरहरि और मुकुंद ने बोले, बेटा आज रहो, कबाड़ बंद कर दिए बाहर से। पहले जमाने में घर होता था, एक ही मेन गेट होता था और इसमें कोई आते थे, पीछे ताटी कबाड़ होता था, छोटे को जाने के लिए बाथरूम, बाथरूम जाने के लिए पीछे तरह दरवाजा होता था। तो घर में लड़का को रख दिए, कबाड़ बंद कर दिए, बाहर ना बैठे पिंडा पर, कोई आएंगे तो पूछे नहीं लड़का कहीं गया है ही नहीं, तो इसे बैठे बोले मना कर देंगे, लड़का है नहीं, लड़का को नहीं दिखाएंगे, बातचीत करेंगे करें देख लें। तो अभिराम ठाकुर पहुँचे समय पर, 9 बजे करीब पहुँचे दिन में, सुबह सुबह आ करके कैसे प्रणाम आदि हुए, मिले दोनों को, दोनों मिले कैसे, और हमने सुना कि आपके बेटा बहुत अच्छा भक्त है, थोड़ा मिलना चाहता हूँ उनसे, मिलना चाहता ना, क्यों ना, थोड़ा बस मिलना चाहता हूँ, मैंने सुना कि इतनी उनका प्रशंसा हो रहा है ना, वो नहीं है कहीं गया, बच्चों के साथ खेलने चला गया, है ही नहीं घर, अरे कबाड़ तो खोलो, नहीं है ही नहीं, खोले नहीं कबाड़, उनको प्रवेश नहीं करने दिए, मना किए, बस खूब बैठा कर बातचीत करके वो वापस दुखी होकर आ रहे थे, मैं आया था इतने दूर से, उनसे भेंट नहीं कर पाया, वापस जा रहे थे, वो पीछे से रघुनंदन जी पीछे दरवाज़ा खोल करके चले गए थे, गांव से हट करके थोड़ा बड़ा डंगा करके जगह है शिखंड में, वहाँ बहुत बड़ा एक पटवृक्ष है, आज भी बड़े सुंदर जगह है, वहाँ नरहरि ठाकुर बैठ करके, उनका साधना स्थल ही नरहरि ठाकुर, यहाँ बैठ करके अपना कविता लिखते थे, वहीं पर बैठ के भजन करते थे, बड़े सुंदर गांव से हट करके एकांत स्थान है, तो वहाँ चले गए, जा करके सारे बच्चों के साथ खेलते थे इधर, बच्चा खेलते, बड़े सुंदर विशाल वटवृक्ष है, बहुत विशाल, तो उसमें जड़ में झूला बनकर खेलना वो करना बच्चों के साथ में, और बच्चा जाकर खेल रहा था। तो हताश होकर के अभिराम ठाकुर वापस जा रहे थे, वापस जा करके देखे, बोली बालकों के अंदर एक बालक इतने अनिंद्य सुंदर है, इतने उम्र के हैं, यही रघुनंदन है क्या, वो तो बोल रहे थे घर में है नहीं, बच्चों के साथ खेलने चला गया, वही तो नहीं है, जाकर सारे खड़े होकर देखे, उन्होंने सारे बच्चों को देखे, देखे कि वो बच्चों के अंदर ये बच्चे तो कुछ और है, उनका खेलने कूदने मन नहीं, उनका तो भाव देखता है कि भक्ति का कार्य कर रहा है, वो तो झूलन लीला चल रहा है उनका, उनका खेल, तो उनको बुलाए, बोले बेटा इधर आओ, तो तुरंत आ गया, बोले तेरा नाम क्या है, रघुनंदन, तेरा बाप का नाम मुकुंदा, बोला अच्छा आप ही रघुनंदन, ना हाँ मैं रघुनंदन, आपने ठाकुर, ना हाँ मैंने कराया था, 2 दिन का 2 बार कराया मैंने, मैंने कराया था, स्पष्ट बोल दिया बच्चा, ओके। तो जब पता चल गया यही है, तो तुरंत कमर कस करके प्रणाम कर दिए, ये दंडवत प्रणाम ड्राफ्ट के किए, उनको देखूंगा तू कैसे भक्त है, जैसे दंडवत प्रणाम किए तो हंसा, उन्होंने हंस कर बोला आप इतने बड़े हैं मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं, उठिए प्रणाम क्यों कर रहे हैं, उठ करके देखा आश्चर्य होकर, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, वो हंस रहा है ऐसे क्यों देख रहा है मुझे प्रणाम करके, आश्चर्य खड़े हुए बोले क्या हो गया, मैं तो वही हूँ, उसको कुछ नहीं हुआ प्रणाम किया, दोबारा दंडवत प्रणाम किए, प्रणाम करके पूरा मंत्र फंत्र पढ़ के प्रणाम किए, प्रणाम कर उठे हंस रहे बोले आप बार बार मुझे क्यों प्रणाम कर रहे, उठे क्या, फिर भी कुछ नहीं हुआ, अति आश्चर्य होकर तीसरी बार प्रणाम किए, तब साक्षात महाप्रभु उनको साक्षात दर्शन दिए, बोले अभी ये और कोई नहीं है, ये तो मैं साक्षात हूं, तो इसलिए उसको टेस्ट मत करो, ये कुछ नहीं होगा उसका। तब उठ करके उनके चरण रज लिया, उनका लिंगन किया, बोला अभी मान गया आप साक्षात भगवत तत्व है, नहीं तो मैं प्रणाम करूंगा, फिर 3-3 बार किया आप सहन कर लिया तो आप जीव तत्व नहीं हो, अब सभगवान सहित उनके दर्शन दिए, आकाशवाणी हुआ, पुष्पवृष्टि हुआ, तो रघुनंदन ठाकुर को मान करके अभिराम ठाकुर वही इतने नृत्य किए, इतने आनंद से नाचने लगे, बोले इतने दिन में ग्वाल के रूप में, क्योंकि ब्रज का भाव उनका आ गया, दोनों अभिराम ठाकुर और वो बालक रघुनंदन इतने प्रेम से नृत्य करने लगे, कीर्तन करके, कीर्तन करते करते रघुनंदन ठाकुर के पैर में एक नुपुर पहना हुआ था, वो पैर से निकल करके चला गया, जा करके कई किलोमीटर दूर में आकाई हाट कह करके जागा है, वहाँ नुपुर गिरा है, नुपुर कुंड आजकल है, वहाँ जाकर गिरा था, उसको ढूंढ करके निकाले थे, इस प्रकार साक्षात ब्रजभाव से नृत्य करने लगे थे वो ये रघुनंदन ठाकुर, वो कोई सामान्य मनुष्य नहीं थे, मनुष्य रूप में साक्षात भगवान थे, इस प्रकार लीला उनका किए थे। और इस प्रकार रघुनंदन ठाकुर, उसके बाद में मुकुंद आदि जब वृद्ध हो गए तो उन्होंने अपने ताऊ नरहरि से शिक्षा दीक्षा प्राप्त किए थे, नरहरि सरकार से, नरहरि ठाकुर। तो वो विग्रह सेवादी उनका मुख्य था, और प्रतिदिन विग्रह के लिए देखे बड़े हो गए कहाँ से लाएंगे, तो एक कदम का पेड़ उनका घर के सामने हुआ, और प्रतिदिन 12 महीना डेली 2 कदम के फूल होगा, और केली कदम बिस्कुल बिल्कुल वृंदावन के केली कदम के जैसे सुगंध, ऐसी जैसे रूप, प्रतिदिन ये 2 फूल आएगा, और बच्चे चढ़ नहीं सकता, वो नीचे गिरेगा, उसको लेकर ठाकुर जी को देता था उन्होंने। इस प्रकार अभी भी कदम के वृक्ष, और उनके पीछे एक तालाब था। एक नित्यानंद प्रभु गए, सुने रघुनंदन के बाद नित्यानंद प्रभु गए जाके, अब मिले उनसे, नित्यानंद प्रभु बलराम आवेश में आ गए, तो कृष्ण देखे, ये कृष्ण देख करके उनका ब्रज के आवास आ गया, बलराम होकर नाचने लगे, नाच करके बोले बलराम जैसे बारूणी पीते, बारूणी चाहिए मुझे, बारूणी चाहिए मुझे। तो अब कहाँ से बारूणी जाएंगे, तो उनके ताऊ जी थे नरहरि, नरहरि दौड़ कर बोले अभी लाता हूँ। उनके पीछे एक तालाब था, वो कुंडे से जाकर 2 लोटा पानी उठाकर ले आए, पानी दिए, वो पानी बोलते हैं कि पूरा तालाब के पानी ही मधु जैसे हो गया था, मधु टेस्ट, क्योंकि नरहरि ठाकुर सख्त मधुमती सखी हैं, तो इसलिए बोले कि अब मधुमती है, बलराम को ला करके बरौनी देते थे, वो तालाब के पानी आज मधुकुंड बोला जाता है उसको, मधु पुष्करणी, तो भी है कदम के फूल। तो इस प्रकार पूरे उनके परिवार शिखंड में अभी भी देखने लग, बहुत अनेक भक्त जाते हैं जहाँ रघुनंदन ठाकुर के सेवा स्थली था। तो अंत में नरहरि ठाकुर जब वृद्ध हो गए, मुकुंद चले जाने के बाद नरहरि जी रह गए थे, नरहरि के शिष्य हैं जो चैतन्य मंगल की रचना किए हैं, लोचनदास ठाकुर वो भी उनके शिष्य थे, वहीं लिखे थे चैतन्य मंगल भी। तो नरहरि ठाकुर जब उनका समय आया जाने का, तो उन्होंने उनको बुलाए रघुनंदन को, बोले बेटा रघु, अब मैं अभी मेरा समय आ रहा है, सब प्रभु जी लोग चले गए, मुझे जाना है, 3 दिन पहले उसको बता। बोले ऐसा करो, तुम कीर्तन करो, अखंड कीर्तन करो, और कीर्तन करके भोग लगाओ, कीर्तन करो, सबको बुलाओ, भक्त लोग बुलाओ, खूब कीर्तन कराओ, और इसी दिन इसी तिथि में इस समय में जाऊँगा, मेरा समाधि यहीं देना, पहले से बोल दे 3 दिन इन एडवांस बोल करके। तो रघुनंदन बात सुन के खूब कीर्तन हुआ, कीर्तन करते करते कीर्तन के बीच में नरहरि ठाकुर अपने शरीर रखे, उनको जहाँ पर पहले से गड्ढा खोद कर रखा गया था, बोल दे मुझे यहीं समाधि देना, तो उनके घर के पास में तो वहीं पे उनको समाधि दिया गया। लेकिन बोल कर गए थे देखो समाधि देने के बाद शिवा पूजा करते रहना मेरा, तो उनके शिष्य थे रघुनंदन। तो तभी जमाने तो इतने बड़े बड़े समाधि करते थे, छोटा सा घर के अंदर गड्ढा खोद कर उनको रख दिए, उनको समाधि दिए थे उनको देने के बाद में, और उनको नित्य प्रति शिवा पूजा भी करते थे। तो कुछ लोग बोले यारे बेकार हो, कब से मर गए, अभी उनके थोड़ी समाधि को भोग लगाने से क्या हो, कुछ नहीं होता। तो उनको बोले तुम क्या करता है, अरे ठाकुर जी खिला, लेकिन वो मर चुका है, जो उनका समाधि में थोड़ी होता है ना, क्यों गुरु जी ने मुझे बोलकर गए, वो समाधि थोड़ी हो तो है, उनका शरीर गया लेकिन वो तो है ना, अरे ऐसे थोड़ी होता है, वो थोड़ी कैसे खाएंगे, उनको खिलाता है, लोग ऐसे कहने लगे। तो उन्होंने उनका मन में संदेह कर, गुरु जी के सच में नहीं पाते। तो एक दिन उन्होंने ठाकुर जी को भोग लगा करके गुरु प्रसाद लेकर के समाधि में रखा, छोटा समाधि आज भी है, समाधि लग करके बाहर आ करके उनको जो विधि बताए थे, पहले तो फिर ट्रेनिंग दिए किसे भोग लगाना चाहिए, बाहर बैठ करके अपना मंत्र जप करना है, आवाहन करना है, जो कर रहा था, लेकिन मन में डाउट हुआ। लोग कहते हैं कि सचमुच गुरु जी तो इतने सालों हो गया समाधि लिए हैं, क्या सचमुच खाते हैं कि नहीं, मैं ऐसा करता हूँ। जा करके दरवाजा खोले, दरवाजा खोले तो नरहरि ठाकुर बैठे थे समाधि के ऊपर में, बैठ कर खा ही रहे थे। तो इसी से प्रमाण है कि हम लोग जो नहीं मानते हैं कि जो नित्य पार्षद गण होते हैं आचार्य गण, उनके समाधि कोई साधारण समाधि नहीं होता, उनके समाधि में वो साक्षात विद्यमान रहते हैं, और उनको भोलगान से उठकर पाते भी हैं, खाते भी हैं, क्योंकि साधारण लोग तो है ही नहीं, रहते हैं इधर उनसे। तो नरहरि ठाकुर बैठ कर प्रसाद पाते हुए दिखाई पड़ा, पर तुझे विश्वास नहीं हुआ, लोग ऐसे बता रहे थे ना, मैं खाता हूँ, दूध खिलाता, मैं किसे नहीं खाऊंगा। तो इस प्रकार रघुनंदन ठाकुर अभिन्न चैतन्य पार्षद थे, चैतन्य महाप्रभु के अंश ही थे। इस प्रकार श्रीखंड में भक्त के नाम से उनके प्रसिद्धि है। आज भी श्रीखंड गौरव लीला भूमि, श्रीगौड़ मंडल भूमि, जेबा जाने चिंतामणि, तारा है ब्रज भूमि वास, श्री गौरंग मंडल भूमि, श्री गौड़ मंडल भूमि में सबसे प्रधान क्षेत्र जो है शिखंड माना जाता है। तो शिखंड के यही रत्न थे रघुनंदन मुकुंद और नरहरि, जो एक ही परिवार का थे। उस तीनों ही इतने गौरगत प्राण थे, गौरंग महाप्रभु के साथ अटूट विश्वास, अटूट श्रद्धा, इतने लगाव था, अपने प्राण पर्यंत महाप्रभु समर्पण करके बैठे थे। एक तो नरहरि तो थे ही, मुकुंद तो आप सुने किस प्रकार कितने स्मरण शक्त था, और रघुनंदन तो साक्षात उसी तत्व में ही थे, वो सबसे परे हो गए। तो इसी शिखंडवासी रघुनंदन ठाकुर, जिनके पूर्ण परिवार, जिनके पिता ताऊ भी गौर पाण प्रासद थे, तो वहाँ आज भी उनके ठाकुर जी पूजा होते हैं। एक तो रघुनंदन के गोपाल और नरहरि ठाकुर के विग्रह, जिनको प्राण गोरा उनका नाम है। नरहरि ठाकुर महाप्रभु पूजा करते थे, वो कृष्ण को पूजा नहीं करते थे। छोटी सी एक लकड़ी से काष्ठ धातु से बनाया गया एक ग्रह, उसका नाम है प्राण गोरा। बोलते गौरांग महाप्रभु मेरे प्राण है, जैसे प्राण गौर को लेकर के अभी भी उनका अलग अलग जगह में जाते हैं। कभी ये मंदिर ए भाई के पास मंदिर में आएगा, वो दूसरे भाई के पास आएगा। सारे उनके वंश परंपरा में आज भी उनकी पूजा चल रहा है, कभी उनके घर में कुछ दिन, कभी उनके घर में कुछ दिन, प्राण गौर। और जो रघुनंद ठाकुर अभिराम जो मिलन हुआ था बड़दंगा में, अंत तो वहाँ लेकर जाते हैं नरहरि ठाकुर के समाधि के समय में, उस एकादशी के समय में लेकर जाकर के वहाँ एक हफ्ता का बड़ा मेला होता है, बहुत भारी मेला, हजारों हजारों संख्या में लोग आते हैं, जहाँ पर मुकुंद अभिराम का मिलन हुआ था और नरहरि की तिथि के समय में प्राण गौर जाते हैं, विशेष उत्सव होता है। इस प्राण गौर और ये गोपाल को सेवा करके रघुनंदन, हम जैसे लोगों को तभी तक नहीं, आज से इतना दिन हो गया, लेकिन अभी उनका ये जो प्रकार के सेवा, जो उनके सेवा के भाव, जिस प्रकार के उनके व्यवहार, वो आज भी गौरांग महाप्रभु के जितने भक्त हुए हैं सभी को गौरगत प्राण को अनुगत अनुप्राणित कर रहा है। तो आज श्री रघुनंदन ठाकुर जो साक्षात अभिन्न गौरांग महाप्रभु के महाप्रभु ही है, तो आज उनके तिथि है। तो आज हम लोग उनको स्मरण करके उनको उनके भक्ति किया, उनको तो साक्षात भगवान है, उनके कार्यकलाप, उनको व्यवहार, इसको स्मरण करके उनके चरण में प्रार्थना कर सकते हैं कि जिस प्रकार उन्होंने बद्ध जीव को उद्धार करने के लिए साक्षात आविर्भूत हो करके और लीला खिला करके तभी अनेक लोगों को आकर्षित किए थे, तो आज उनके इस कृपा के कुछ छोटी सी हिस्सा अगर हमारे ऊपर दें, इससे हमारा जीवन भी सफल हो जाए। इसी प्रकार प्रार्थना से श्री रघुनंदन ठाकुर में हमारा श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे। श्री रघुनंदन ठाकुर की, श्री नरहरि ठाकुर की, श्री मुकुंद कविराज की, खंडवासी भक्तगण की। तो इस प्रकार रघुनंदन ठाकुर के बारे में अभी समय नहीं है। आज एक और भी विभूतियों के आज तिथि है, श्री बंसीदास बाबाजी महाराज, आज उनके भी तिथि है। आप शायद नाम सुने होंगे नहीं होंगे, बंसीदास बाबाजी महाराज को ज़्यादा पुराने नहीं है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जब थे उन्हीं के ज़माने में थे, मैमानसिंह डिस्ट्रिक्ट में उनका घर था। उन्होंने भी बचपन से गृह त्याग करके आ गए थे, इतने परम विरक्त संत थे, वो आ करके मायापुर नवद्वीप में रहकर भजन करते थे। उनका भी बड़े लगन था, वो राधा कृष्ण भी रखे थे और गौरांग महाप्रभु रखे थे, गौरनीता भी रखे थे, रख करके पूजा कर रहे थे और कुछ नहीं थे करे, उनका अद्भुत राग मार्ग भक्त थे वो। कभी कुछ कुछ दिन तो हफ्ता दस दिन तक खाएंगे नहीं, बैठे रहेंगे, इसे भजन जब कर लग जाएंगे। कुछ कपड़ा नहीं, ऐसे पहन देते कि कोपिन मात्र पहन करके जटा जुट सारे नाड़ी वाले के इसी भाव से रहते थे वो। तो गौरनीता विग्रह जब से रखे, उन्हें सेवा करने लगे, तो एक बार गौर पूर्णिमा आया, कई के लोग जाते थे, बोले बाबाजी महाराज बड़े, बाबाजी महाराज अवधू थे, ऐसे लोग जाते थे। कोई जाकर बोले कि कलकत्ता से आए थे, बोले हम चुप दिए, बोले हटो यहाँ से, आप देंगे आकर हटो, कोई कुछ नहीं रे, चले गए सो गाली दे। तो लेकिन गौर पूर्णिमा है, उत्सव तो करेगा, अभिषेक करेगा, कुछ करेगा, गौरनीता विग्रह है, बोले कोई बात नहीं मैं करूँगा। गौरनीता को लेकर चले गए गंगा जी में, जा करके उनको बांध करके रस्सी में डुबा दिए गंगा में, लो अभिषेक। इतना बड़ा महाभिषेक कैसे होगा, बोले कहाँ से लाऊं दही दूध मधु की सब सीधा डांग कर दोनों विग्रह गंगा जी में डाल दें, बोले खूब नहाओ, खूब अभिषेक हो जाओ, मैं क्या नहीं लाऊंगा, आप नहाओ खूब। गंगा में घंटे भर डुबा कर उठा कर ले आए और ला कर रखे, बोले वो क्या करूँ, अभिषेक तो गंगा जी में करवा दिया। अब हो क्या लगाऊ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तू ही व्यवस्था करो, तेरा जन्मदिन है तू कुछ करो व्यवस्था। तो किसी व्यक्ति ने तुरंत गौरांग महाप्रभु की इच्छा के अनुसार किसी व्रत में दो चांदी के थाली और कई सारे भोग सामग्री ला कर दे गया तो बोले व्यवस्था किया तेरा आज वहापी बात है, वो करेंगे और क्या है। तो थाली भी दिया था, भोग नाग सब दिया था, लगाया भोग लगा करके प्रसाद खा कर इतने प्रसन्न हुए तो रखे। अब दो तीन दिन के बाद में उनको तो बस उनका कोई कुटिया तो था कुछ, दरवाजा फरवाजा कुछ था नहीं, ऐसे गोर निताई थे। तो वो जाते थे कभी भिक्षा करने के लिए, कभी कभी भिक्षा करते थे, जिस दिन भिक्षा करेंगे जो मिलेगा उसको पकाएंगे तो ठाकुर जी को खिलाएंगे, वो खाएंगे, नहीं तो खुद भी नहीं खाएंगे ठाकुर जी नहीं खिलाएंगे, यही हालत था उनका। जब भिक्षा करेंगे उसी दिन कुकिंग करेंगे, इसी दिन भोग लगेगा, उस दिन वो भी खाएंगे ठाकुर जी भी खाएंगे। तो आज भिक्षा करने के मन किया था, गए थे भिक्षा करने के लिए और गोरनीता के सामने वो थाली रखा हुआ था, चांदी के प्लेट था। आजकल जानते भाई तो कलयुग है, कौन संभालता, ठाकुर जी को उठा ले जाते हैं। तो किसी ने आया देखा कि वो नज़र पड़ा, एक प्लेट उठा के ले गया, प्लेट उठा के दोनों प्लेट उठा के ले गए थे, वो आकर देखे प्लेट नहीं, भिक्षा लेकर आए थे प्लेट नहीं। बोले अरे तुम दो दो आदमी घर में है, आप अपना अपना प्लेट भी संभाल नहीं सके, अपना खाने का प्लेट नहीं संभाल सके, दो दो खड़े हो इधर, तुमको खाना पीना बंद, जब तक प्लेट व्यवस्था करो तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खिलाऊंगा। इस प्रकार के भाव के भक्त थे, वो दिए नहीं उन्हें खोलो, नहीं खाना नहीं दी जाएगा, मैं आज राधा माधवन मोहन को भोग लगाऊंगा, आप दोनों फास्टिंग करो, अपना प्लेट लाओ तब खाना। प्लेट कौन ले गया, खड़े थे कैसे दे दिए प्लेट किसको। आप दो चार दिन भोग नहीं लगाए और किसी ने ला करके प्लेट दिया, बोले निताय क्या है, बोले तेरा नहीं है, तू अपना जुगाड़ कर, उनको खिलाऊंगा, तुझे नहीं खिलाऊंगा। इस प्रकार से करते थे, इस प्रकार के भाव के भक्त थे। पागल के लोग को पागल समझ, अवधूत समझ रहे थे, कभी नहाते कभी नहीं नहाए, कब बैठेंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे, रात दिन रोते रहेंगे, बैठ के भजन करते रहेंगे। तो इस प्रकार भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद जब उनको मिलते थे देख करके समझ गए थे कि वे साधारण विभूति नहीं है। और जब भी महापुर में आते थे भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद को मिलते थे तुरंत बोलते थे गोपी ए गोपी ए गोपी करके बोलते थे, भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद को उन्होंने गोपी गोपी बोलते थे। तो भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद ने, बाकी लोग बोलते थे गुरुजी ये तो पागल है, नहाता भी नहीं, कोई नहीं देखे उनके जीवन काल में, वो टॉयलेट बाथरूम जाते थे, बोले टॉयलेट बाथरूम खाता पीता नहीं तो क्या करे टॉयलेट बाथरूम, कुछ जाता ही नहीं, किस वगैरह इस प्रकार है कैसे, आप तो हमको सुचिता इतने स्वच्छ ऐसे भी सिखाते हैं, तो पागल है, गौर पुण्या में विग्रह को लाके गंगा में डालता है, बोले ना हो। ऐसे खाना नहीं देता, बोलता वो थाली लाओ तुम खाओ, ऐसे करता। भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद डांटे उनके शिष्य को, बोले तुम नहीं जानते हो, वो जिस तर्क हैं इस तर्क को आप नहीं समझ पाएंगे। तो डांट करके बोले क्या है, बोले आप लोग का अपराध हुआ न, कैसे मार्जना होगा, न जाओ उनके सेवा करो, उनके झुट्टन खाओ, नहीं तो बच नहीं सकते, ऐसे विभूति को आप निंदा किया। तो भक्तिसिद्धांत प्रभु दो भक्त हमेशा उनके सेवा, उनका कोई इसी शब्द नहीं थे, दो भक्त हमेशा देते थे ब्रह्मचारी, वो जाकर बोले उनके पास तो जाने से गाली देंगे, तो उनके पास रहना, आप अपने मेंटेन करके रहना उनके पास में, जिस दिन उन्होंने भिक्षा करके भोग लगाएंगे, भोग लगाकर खाएंगे तो उस बर्तन में जो बचेगा आप लोग खाना, वो मुझे भी पार्सल करके भेजना ये प्रसाद, नहीं तो देंगे नहीं। तो वेट करते थे हफ्ता में 10 दिन में, कभी कभी वो भिक्षा करके भोग लगाते थे और भोग लगा करके खाते थे और खिलाते थे, खुद खाते थे। तो उनके जो भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद के दो ब्रह्मचारी वो उनके पास रहते थे, तो उसमें से वो झूठ पा करके और बाकी थोड़ा प्रसाद प्याग करके भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद के पास भेजते थे, क्योंकि बाबाजी महाराज के प्रसाद उनको पाते थे। तो इसे महाविभूति के प्रसाद पाने के लिए भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद साक्षात वैकुंठ पुरुष भी ललायत रहते थे। भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं माई गुरु महाराज जी वैकुंठ पर्सनालिटी, एक साधारण व्यक्ति थे, तो तभी तो पहचान पाए कि वो कौन है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, उनको पागल समझ रहे हैं, वो तो सीधा गुरु पार्षद उनसे बातचीत कर रहा है, इसलिए उनके फ्रेंड है, सख्य रस में है वो, उनके साथ फ्रेंड की तरह डील करता है, आप लोग क्या जाने। तो इस प्रकार आज भी ऐसे बंसीदास बाबाजी महाराज, उनका भी तिथि है, तो आज ऐसे महान दो विभूति, उन दोनों को उनके स्मरण करके, उन लीला को याद करके, उन दोनों के कृपा आशीर्वाद को भिक्षा करने के लिए आज ये तिथि का हम सुयोग लेना चाहिए, विशेष सुयोग में, ताकि उनके कृपा से हमारा जिस प्रकार उनका गौरांग महाप्रभु प्रति, कृष्ण के प्रति जिस प्रकार भाव था, जिस प्रकार भक्ति था, हमारा ऐसा तो नहीं हो सकता उसमें एक करोड़ हिस्सा में एक हिस्सा हो जाए तभी हमारा जीवन सफल हो जाए। इस प्रकार से उनको प्रार्थना करते हैं आज की तिथि में। श्री बंसीदास बाबाजी महाराज की निताय गौर हरि प्रेमानंदे। वही श्रीखंड में ही है, उनका घर के अंदर ही है। जागा श्रीखंड बाबा रघुनंदन का घर में ही है, उनका मंदिर के सामने उनका समाधि। श्रीखंड वेस्ट बंगल नवदीप से 40 किलोमीटर आगे काटुआ और नवदीप के बीच में है श्रीखंड। हाँ बोलिए। देखिए भगवान अनेक विस्तार कर सकते हैं, है ना, नहीं उनके विस्तार को तो सीमा नहीं। जब वृंदावन में ब्रजलीला में भगवान जब नाच कर रहे थे गोपियों के साथ में, कृष्ण तो एक ही थे ना, लाखों गोपी थे, कितने कृष्ण हो गए थे, ये तो वृंदावन की लीला। द्वारका में कितने बीवी थे उनके, हजारों संख्या में थे ना। अगर अगर आप हम लोग का जैसे होते एक एक पत्नी के साथ एक एक दिन रहते तो गया उनका, उनका उम्र ही बीत जाएगा, वे 16,000 दिन वेट करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, होलसेल 16,000 कृष्ण थे, 16,108 इतने पत्नी, इतने कृष्ण वहां करते थे। तो क्या कृष्ण इतना बढ़ गए क्या, किसी की पता नहीं चलता था। वो तो बोलते कृष्ण मेरे ही पास है, कृष्ण मेरे ही पास है, सभी के पास कृष्ण एक समय में रहते थे। नारद जी चेक करके देखे थे इस बात को। तो इसलिए भगवान जैसे अपने को अनंत विस्तार कर सकते हैं, भगवान के भक्त भी कहीं विस्तार कर सकते हैं। ये सब भाव के भूखे हैं, कहीं उनको आराधना करो तो फूल में भी, पत्ते में भी, विग्रह में कहीं भी आ सकते हैं, नहीं तो नहीं आ सकते, उनके ऊपर है ऐसा, है ना। हरे कृष्ण। और कुछ? हरे कृष्ण।